تفسیر تلاوت آپ نے سنی اور آپ یہ محسوس بھی کر رہی ہوں گی کہ آپ ان واقعات کو پہلے بھی پڑھ چکی ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ قوموں کے واقعات جو ہے وہ پیش کرتے ہیں, اور کس لیے؟ تاکہ ہم اس سے جو ہے وہ عبرت حاصل کریں. آپ پچھلی آیتوں میں فرعون کا تمرد جو تھا, فرعون کا جو استکبار تھا اور اس کا انکار کرنا وہ پڑھا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری بھی ہمارے سامنے آئی. یہ دونوں ہی وقت کے بادشاہ, لیکن ایک جو تھا وہ بادشاہت کی جو ہے وہ شان و شوکت اور جاہ و جلال کے ساتھ ساتھ وہ ابدیت کا کمال اور جمال لیے ہوئے بھی تھے, اور دوسرا جو تھا وہ دولت کے نشے میں جو تھے وہ کبر اس کے اندر جو ہے وہ آ گیا, اور وہ کون تھا؟ فرعون. اور تیسری طرف ملکہ سبا کہ جو فرعون کی طرح نہیں تھی, تھی وہ بھی بادشاہ لیکن جب حق اس کے سامنے پورے دلائل کے ساتھ, پوری وضاحت کے ساتھ, پورے حسن کے ساتھ پیش کیا گیا تو اس نے سر اطاعت جو ہے وہ جھکا دیا. اور اب آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ عرب کی اقوام بائدہ میں سے دو قوموں کا جو ہے وہ ہمیں ذکر مل رہا ہے. بائدہ دور کی قومیں, پرانی قومیں, اس میں ایک ہے ذکر قوم سمود کا, اور آج کے سبق میں دوسرا ذکر کس کا ہے؟ قوم لوط کا. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر قوم سمود اور قوم لوط کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ ان کا فساد, ان کا انجام, اس پہ غور تو کرو تاکہ قریش یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ جو تھے یہ تو دور کے ملکوں کے لوگ تھے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں, یعنی جیسے پیچھے جو انہوں نے واقعات پڑھے, تو اب مصر ہے یا فلسطین ہے یا یمن ہے, تو اب اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ خود اپنے ملک کے اندر کی قوموں کے واقعات ان کو سنا رہے ہیں, کیونکہ قوم سمود, قوم لوط ان کے قریب کے علاقوں سے تعلق رکھتی تھیں, تاکہ وہ ان قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کریں اور اس طرح اہل قریش استکبار نہ کریں, کیونکہ جس طرح ان قوموں نے کیا تو پھر ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہوا. تو ان کے بھی عالیشان کھنڈرات تھے, ان کے اندر بھی سردار تھے, ان کو اپنی سرداری پر بڑا زوم تھا, لیکن کیا ہے کہ ان کے عالیشان جو محل تھے وہ کھنڈر بن کر رہ گئے. تو عبرت کے لیے واقعات کو بار بار پیش کیا جاتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا, اور تحقیق ہم نے روانہ کیا, ہم نے بھیجا, إِلَى سَمُودَ, سمود کی طرف, اخاہم ان کے بھائی کو, صالحاً, صالح علیہ السلام کو, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, کہ اللہ کی بندگی کرو. تو یہ پیغام دے کر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا, اور پیغام کیا تھا؟ توحید کا, انِ اعْبُدُوا اللَّهَ, کہ اللہ کی بندگی کرو. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ, تو یکا یک وہ ہو گئے. فَإِذَا کے معنی کیا ہے؟ اچانک, فوراً, دفتن وہ ہو گئے. فَرِيقَانِ, دو گروہ, تو ان میں دو گروہ بن گئے. جو ہی صالح علیہ السلام کی دعوت کا آغاز ہوا, قوم دو گروہوں میں بٹ گئی, اور بٹ کر کرنے کیا لگی؟ یختصمون, جھگڑا کرنے لگی. اور دو گروہ کون سے تھے؟ ایک ایمان لانے والوں کا اور دوسرا گروہ جو تھا وہ انکار کرنے والوں کا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا بتا رہے ہیں کہ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بھیجا. اور قوم سمود جو تھی اس کی خاص بات کیا تھی جو آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں؟ پہاڑوں میں تراش کر گھر بناتی تھی, سالڈ راکس اس کو کاٹ کاٹ کر, تراش تراش کر گھر بناتی تھی, اور فن تعمیر میں یہ بڑی مشہور تھی, اور وادیوں میں بھی اونچے اونچے محل بناتی تھی. تو بڑی ہی تہذیب اور ثقافت میں یہ قوم جو تھی وہ مشہور تھی. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو, تو بھائی سے مراد کیا ہے؟ انہی کی قوم میں سے قومی بھائی تھے. صالح علیہ السلام کو بھیجا, یہ ایک جلیل القدر پیغمبر تھے. اور کتنا عرصہ انہوں نے قوم سمود کو دعوت دی؟ حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں انہوں نے کتنی دعوت دی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی دی؟ 950 سال. اور حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ایک کثیر مدت، بہت لمبی مدت جو ہے وہ ان کو دعوت دی، اور دعوت کیا تھی؟ توحید کی. تو یہاں پہ جو بات اللہ تعالیٰ واضح کر کے پیش کر رہے ہیں، جس کو جو ہے وہ عبرت کے لیے پیش کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو ہی حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا آغاز ہوا تو ان کی قوم جو تھی وہ دو گروہوں میں بٹ گئی. قوم کے اندر بحث، نزاع اور جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو گئی. تو دعوت اور اس کا رد عمل کیا تھا؟ کہ قوم دو گروہوں میں بٹ گئی. تو ایک گروہ ایمان لانے والا اور دوسرا انکار کرنے والا. جیسے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت جو ہیں قرآن مجید میں سورت آراف میں بھی بتاتے ہیں، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. اس کی قوم میں سے جو سردار اپنی بڑائی کا گھمنڈ رکھتے تھے، انہوں نے ان لوگوں سے جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، جو ان میں سے ایمان لائے تھے، کہا کیا واقعی تم یہ جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جس کو لے کر وہ بھیجے گئے ہیں. تو یہ ہو گیا ایک گروہ. ان متکبرین نے کہا جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کے کافر ہیں. یہ تھا دوسرا گروہ. تو سورۃ الاعراف آیت 75 اور 76 کو آپ پڑھ لیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو ہی دعوت ملی، جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، یعنی قوم کے اندر سرداروں نے کچھ لوگوں کو اپنا مطیع بنا کر رکھا ہوا تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ دین اسلام کو فوری قبول کیا. اور جو ہے جو مستکبرین تھے انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جس چیز پر تم ایمان لاتے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. تو جھگڑا کیا تھا؟ ایمان کا اور کفر کا جھگڑا تھا. اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دعوت دی تو وہاں پہ بھی جو تھے وہ مکہ میں دو گروہ بن گئے. اور اس میں کیا تھا؟ آپ پر ایمان کون لائے؟ جو زیادہ تر غریب لوگ تھے، غلام طبقہ تھا. اور پھر کیا تھا؟ کسی کی بیوی، کسی کا شوہر، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، مختلف جو رشتے تھے، ایمان لائے تو گھروں کے اندر ایک نزاع کی کیفیت پیدا ہو گئی. تو دین اسلام جب بھی صحیح روح کے ساتھ، صحیح طریقے سے، پورے دلائل شواہد کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے تو تلاطم آ جاتا ہے، ایک طوفانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک انقلابی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یختصمون قال یا قومی، صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم. تو یہاں پہ کیا بات ہے کہ کافر قوم ہے، جھگڑا کر رہی ہے، لڑائی کر رہی ہے، دین کا انکار کر رہی ہے، لیکن صالح علیہ السلام جو ہیں پھر بھی اس کو یا قومی کہہ کر پکارتے ہیں، اے میری قوم، اے میرے پیاروں، اے میرے لوگوں، اے میرے اپنوں. لما تستعجلون بالسیئات قبل الحسنہ، تم کس لیے جلدی مچاتے ہو؟ لما تستعجلون، تم کیوں عجلت کرتے ہو، تم کیوں جلدی چاہتے ہو؟ بالسیئات قبل الحسنہ، حسنہ سے پہلے برائی. سیئہ، تو اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے تم جلدی کیوں مچاتے ہو؟ اصل میں قوم صالح جو تھی وہ کیا کر رہی تھی؟ شرک کر رہی تھی، پیغمبر کا انکار کر رہی تھی، اور جو ہے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہیں لا رہی تھی، ہے نا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا؟ اونٹنی کا معجزہ دیا. کہا مانیں گے نہیں جب تک کہ اس پہاڑ میں سے اونٹنی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ پیدا نہ ہو جائے تو ہم مانیں گے نہیں. اونٹنی کا معجزہ دیا، انہوں نے اس کا بھی انکار کیا، اور پھر جو ہے انہوں نے اونٹنی کو جو ہے وہ قتل کر دیا. اس کے بعد وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ان کو ڈرا رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے، تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہتے تھے کہ جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے وہ لے کیوں نہیں آتا؟ سورۃ الاعراف آیت 77، یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین. اے صالح، لے اب وہ عذاب ہم پر جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے. تو یہاں پر سیئہ سے مراد کیا ہے؟ برائی. برائی سے مراد کیا ہے؟ عذاب. کہ حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں उनको ये बताते थे कि तुम जो नाफरमानी कर रहे हो, तुम जो गुनाह कर रहे हो उस पे अल्लाह से माफी नहीं मांग रहे और शिर्क को छोड़कर तौहीद इख्तियार नहीं कर रहे, तो तुम पर जो है सैया आ जाएगा, तुम पर अजाब आ जाएगा। तो वो कहते थे फिर वो अजाब आ क्यों नहीं जाता जो जिसका तुम हमें जो है जिससे तुम हमें डराते हो। तो अब सवाले अलैहिस्सलाम उन्हें समझा रहे हैं कि लौला तस्तगफिरून अल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, क्यों नहीं तुम अल्लाह से मगफरत तलब करते ताकि अल्लाह तुम पर रहम कर दे, है ना, क्यों नहीं तुम अल्लाह से इस्तगफार करते ताकि तुम पर रहम किया जाए, शायद के तुम पर जो है वो रहम किया जाए। तो इससे क्या बात पता चलती है कि सवाले अलैहिस्सलाम जो है वो अपनी कौम को समझा रहे हैं, कौम है कि इनकार कर रही है। और एक बात हमें और पता चलती है कि इंसान ने जिंदगी में कितने ही गुनाह क्यों ना किए हों, लेकिन जब इंसान जो है वो अस्तगफार करता है तो अल्लाह ताला ना सिर्फ गुनाह माफ करता है बल्कि अस्तगफार के नतीजे में रहमत जो है वो नाजिल करता है। क्या करता है कि जब अल्लाह ताला किसी कौम के अस्तगफार को कबूल कर लेता है तो फिर अल्लाह ताला उसको जो है वो नवाजता चला जाता है, फिर अल्लाह ताला उस पर रहम करता है। रहम क्या होता है? ईमान की तौफीक देना, ईमान में तरक्की देना, दुनिया भी देना और फिर आखरत भी देना, और आखरत में जहन्नुम के अजाब से बचाना और जन्नत में दाखिल करना। लअल्लकुम तुरहमून, शायद के तुम पर रहम किया जाए। कालू, अब उन्होंने कहा, अब वो बोले, कालू तय्यरना बिका व बिमम्माक। अब वो उन्होंने क्या कहा कि अब कौम के लोग जो हैं ईमान लाने की बजाय, इकरार करने की बजाय, आपकी दावत का असर कबूल करने की बजाय वो बहुत हठधर्मी पर पहुंचे हुए थे। तो अब जो है वो क्या कहते हैं कि वो हजरत सवाले अलैहिस्सलाम को और जो ईमान लाने वाले साथी थे उन पर एक इल्जाम लगाते हैं, और इल्जाम जो है वो किस चीज का है, वो ये कहते हैं कि तुम हमारे लिए फाले बद हो। कालू तैयर ना बिका कभी मम्माक, अब वो कहते हैं कि हमने तुमको और तुम्हारे साथियों को तैयर ना, बदशगुनी जो है उसका निशान पाया है, उसको नहुसत का निशान पाया है, फाले बद पाया है। कालू तैयरना, और आपको पता है शद है यहाँ पे दो दफा, तो बहुत ज्यादा इस बात में जो है वो शिद्दत है कि उन्होंने हजरत सवाले अलैहिस्सलाम से कहा कि हम तो तेरी और तेरे साथियों की बदशगुनी ले रहे हैं। तो आपको पता ही है कि ये जो तैयरना जो है ये क्या था, ततैयरना था, इसकी असल क्या है, तोय यारा है ना, तैर, और तयूर जो है वो जमा के लिए वो भी आता है लेकिन तैर खुद भी इस्म जिन्स होता है, और यहाँ पर जो है तैर का मतलब उड़ना है, यानी अरब जब किसी काम का या सफर का इरादा करते तो परिंदे को उड़ाते, अगर वो दाईं जानिब उड़ता तो उसको नेक शगुन करार देते और समझते कि ये काम मैं कर लूं तो ये मेरे लिए ठीक है, सफर करना शुरू कर देते, तिजारत कर लेते, निकाह कर लेते, जो वो काम करना चाहते, अगर वो बाएं जानिब उड़ता तो उसे बदशगुनी समझते, उस काम से या उस सफर से रुक जाते। तो अब जो है यहां पर वो क्या कहते हैं कि तुम्हारी ये जो तहरीक है, ये जो तुम ईमान की दावत दे रहे हो, ये हमारे लिए क्या है, तैयरना, हमारे लिए सख्त मनहूस साबित हुई है। अब वैसे तो इसका मतलब उड़ाना है, तो फिर वो लोग इसको मनहूस क्यों कहते थे, इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह दरअसल ये थी कि उनका मामला ये था कि ये जो लफ्ज है ना तैयर ना का, ये आम तौर पर जो है बदफाली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो ये समझते थे कि तेरी दावत, तेरा वजूद, इसकी वजह से हमारी जो कौम है उसके अंदर जो है वो झगड़ा, लड़ाई जो है वो हो रहा है ना, हमारे लोग आपस में जो हैं वो इस वजह से जो है वो अब परेशान हो रहे हैं। तो इसके मतलब क्या है कि बदशगुनी का इसको वो जरिया करार देते थे, और वो ये समझते थे कि हमारे माबूद हमसे नाराज हो गए हैं और इस वजह से जो है हमारे जो कौम के लोग हैं वो आपस में जो है वो अब झगड़ रहे हैं, तो ये है इसके मानी के, जैसे आप देखिए कि आयत नंबर 18 सूरत यासीन में भी क्या आता है, एक कौम का जिक्र आता है कि वो अपने नबियों से कहती है इन्ना ततय्यरना बिकुम, ततय्यरना बिकुम, हमने तुमको मनहूस पाया है। इसी तरह फिरौन की कौम जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक क्या कहती थी, फाइजा जाअतहुमुल हसनतु कालू लना हाजही वइन तुसिबहुम सैयातुन सैयातुन यतय्यरू बिमूसा व मम्मा, जब उन पर कोई अच्छा वक्त आता तो कहते हैं हमारे लिए यही है, और जब कोई मुसीबत आ जाती तो मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को जो है वो उनकी नहुसत जो है वो नहुसत का जिम्मेदार ठहराते, इस नहुसत का उनको जिम्मेदार ठहराते। सूरत आराफ आयत जो है वो 130, और करीब करीब यही बातें जो है वो अहले मक्का भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले मक्का जो थे वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लाए थे इनके बारे में जो थे वो कहते थे। तो इन्होंने भी क्या कहा कि हमारी जो बदशगुनी क्या है, तुम और तुम्हारे साथी हजरत सालेह अलैहि सलाम और उन पर ईमान लाने वाले, और बदशगुनी क्या थी, वो ये समझते थे कि हम पे अगर कहत आ गया है, हम पर कोई मुसीबत आ रही है, हम परेशान हाल हैं, हमारे माबूद अब हमसे नाराज हो गए हैं, तो क्योंकि तुमने हमारे दीन अबाई के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। और इसके एक मानी क्या है कि तुम्हारे आते ही हमारी कौम में तफरका पैदा हो गया, फूट पड़ गई है, इससे पहले तो हम इकट्ठे थे ना, ऐसे तुम्हारे बुरे कदम आए कि भाई भाई का दुश्मन हो गया, बेटा बाप से कट गया, तो कौम के अंदर एक नई कौम जो है वो पैदा हो गई। तो यही बात थी ना जो अहले मक्का ने जो है वो रसूलुल्लाह के बारे में कही थी, और एक वफद अबू तालिब के पास भी गया था और उसे जाकर यही तो कहा था कि अपने इस भतीजे को हमारे हवाले कर दो जिसने तुम्हारे दीन और तुम्हारे बाप दादा के दीन की मुखालफत की है और तुम्हारी कौम में फूट डाल दी है और सारी कौम को बेवकूफ करार दिया है। तो आप देख लीजिए कि किस तरह जो है हर दौर में होता रहा, हत्ता के हज के मौके पर जब कुफारे मक्का को अंदेशा हुआ कि कहीं बाहर से हज करने वाले खाना काबा की ज्यारत करने वाले आकर रसूलुल्लाह जो है इसकी दावत से इनकी दावत से मुतासर ना हो जाए, तो उन्होंने आपस में मशवरा करके क्या तय किया था कि बाहर से आने वालों से बस यही कहेंगे कि ये शख्स जादूगर है, इसके जादू का असर ये होता है कि बेटा बाप से, भाई भाई से, बीवी शोहर से और आदमी अपने सारे खानदान से कट जाता है। तो ये भी क्या करते थे कि हजरत सालेह अलैहि सलाम को जो ईमान की दावत दे रहे थे, जो पैगंबर का पैगंबरी का फरीजा सर अंजाम दे रहे थे, उनको और आप पर ईमान लाने वालों को बदशगुनी समझते थे। तो ये था इनका तरीका। तो क्या कहा, काला तायरुकुम इंदल्लाही, हजरत सालेह अलैहि सलाम ने कहा कि तुम्हारा तायर जो है वो अल्लाह के पास है, बल अंतुम कौमुन तुफ्तनून, बल्कि असल बात यह है कि तुम्हारी कौम की आजमाइश हो रही है, तुम फितने में डाले गए हो। ये जो है कि तायरुकुम इंदल्लाह के तुम्हारा तायर अल्लाह के पास है, इसके क्या मानी है, यानी तुम्हारा नेक और बद शगुन का जो रिश्ता है ना, उसका जो सिरा है ना, वो अल्लाह के पास है। तो ये मतलब है कि अहले ईमान नहुसत का बायस नहीं है जैसा तुम समझते हो, इसकी असल का सबब अल्लाह ही के पास है, क्योंकि कजा तकदीर अल्लाह के इख्तियार में है। अगर अब तुम पर कहत आ गया है, तुम्हें नहुसत आई हुई है, तो अल्लाह की तरफ से है और उसकी वजह तुम्हारा कुफर है, तुम्हारा इनकार है, क्योंकि आपने जो है वो पिछले ही सबक में ये बात पढ़ी है ना कि अगर तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह तुम्हें ज्यादा देगा, अगर तुम कुफर करोगे तो अल्लाह तुम्हें महरूम करेगा। तो अल्लाह ताला ने जो अपनी नेमतों की बारिश तुमसे रोक दी है, तो इसकी वजह क्या है कि तुम जो है वो कुफर कर रहे हो। तो तुम्हारे जो है वो तुम्हारे अमलों का रिश्ता अल्लाह के पास है, तुम्हारे अपने रवैये हैं है ना जो तुम बना रहे हो, जो तुम बिगाड़ रहे हो। ये बात नहीं है कि हमारी वजह से तुम मुसीबत में पड़ गए हो, बल्कि असल वजह ये है कि अल्लाह ताला जो है वो क्या कर रहे हैं, तुम्हारा इम्तहान ले रहे हैं। और फिर ये वाली बात कहना कि तुम ऐसी कौम हो जो कि आजमाइश में डाले गए हो, बलन तुम कौमुन तुफ्तनून, इसके मानी क्या है कि कौमों पर नरम सख्त दिन आते ही रहते हैं और इसका ये थोड़ी मतलब है कि तुम झुटला रहे हो तो मेरी वजह से तुम पर आए हैं, बल्कि क्या है कि अल्लाह ताला जो है वो आजमाइश जो है वो देते ही रहते हैं। और आप देख लें कि तुफ्तनून फातानून से है फतन से, और होता क्या है इसके मानी कि सोने को जो है वो कठाली में पिघलाना, उसको गर्म करना, इतना हाई जो है वो दर्जा हरारत हो कि जिसमें सोना पिघल जाए, है ना। तो आम जो दर्जा हरारत होता है उसमें तो सोना नहीं पिघलता, 400 से ऊपर पे जाकर पिघलता है, 100 पर या इससे करीब पर तो पानी उबलने लगता है, है ना। लेकिन सोने को पिघलाने के लिए दर्जा हरारत बहुत ज्यादा तेज करना पड़ता है। तो लोगों की रवैये जो हैं उनके मुताबिक उस दर्जे की उन पर आजमाइश आती है। नबियों को भी सख्त आजमाया गया, ईमान लाने वालों को भी, इसी तरह कुफ्र करने वाले जो हैं उनकी भी सख्त आजमाइश है। तो असल बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि हमारी वजह से तुम पर कोई आजमाइश जो है वो आ रही है, बल्कि ये जो है ना सरे रिश्ता तकदीर का तदबीर का, ये भी अल्लाह के हाथ में है, ये अल्लाह की मशीयत है, ये अल्लाह की हिकमत है, हमारी वजह से नहीं है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला तुम्हारी आजमाइश कर रहे हैं, आजमाइशों में डालकर अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर हक को कबूल करने की सलाहियत मौजूद है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि तुम मुर्दा हो, तुम दफन करने के लायक हो कि तुम्हें खत्म ही कर दिया जाए। तो ये है असल बात, बल अंतुम कौमुन तुफ्तनून, बल्कि असल बात यह है कि तुम लोगों की आजमाइश हो रही है। तो मुख्तलिफ इम्तहान है, जैसे कहत आ गया तो क्या मतलब है कि अब तुम जो है वो कहत के दिनों में अल्लाह की तरफ रुजू करते हो कि नहीं, अल्लाह से ताल्लुक कायम करते हो कि नहीं। तो कभी अच्छे दिन दिखाते हैं अल्लाह ताला, कभी बुरे दिन दिखाते हैं, ये अल्लाह का कानून इमहाल है। और मकसद क्या है कि ये देखना कि तुम अल्लाह की तरफ रुजू करते हो कि नहीं, तुम हक को कबूल करते हो कि नहीं, या फिर बातिल पर जमे रहते हो। قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ, بلکہ تم ہی وہ قوم ہو جو کہ آزمائش میں ڈالے گئے ہو۔ تو وہ قوم جو قوم سموت کے نام سے یاد کی جاتی ہے کوئی معمولی قوم تھوڑی تھی, بلکہ کیا تھا کہ بڑے ہی اس کے اندر جو تھے وہ جتھے تھے, اور بڑے ہی ان کے اندر جو تھے وہ سردار تھے, اور بہت ہی سخت یہ لوگ انکار کرنے والے تھے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ, اور تھا اس شہر میں, اور تھے اس شہر میں 9 جتھے دار, يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, وہ کرتے کیا تھے زمین میں فساد کرتے تھے, وَلَا يُصْلِحُونَ, اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ قوم سمود جو کہ ہجر نامی بستی میں رہتی تھی, اسے ام القرا بھی کہا جاتا ہے, یہ مکہ سے شام جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہے۔ اب اس شہر میں ایسے 9 بدماش ٹائپ چودھری تھے, 9 سرغنے تھے, یا 9 جو تھے وہ بہت ہی بری خصلت رکھنے والے جو تھے وہ چودھری تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ راحت کا لفظ استعمال کیا گیا جو جماعت کے معنی دیتا ہے, اور یہاں 9 اشخاص میں سے ہر شخص راحت کے لفظ سے جو ہے, مفسرین کہتے ہیں کہ 9 لوگوں میں سے ہر شخص کو راحت کے نام سے یاد کیا گیا۔ کیوں؟ یہ لوگ اپنی مال و دولت میں, اپنے خادموں کی کثرت میں, اپنے غلاموں کی سبب کی وجہ سے قوم میں بڑے مانے جاتے تھے, ہر ایک کے ساتھ الگ الگ جماعتیں تھیں, اس لیے 9 آدمیوں کو 9 جماعتیں کہا۔ اور یہ لوگ قوم صالح علیہ السلام کی جو بستی ہجر نامی بستی تھی, جس کو حجر بھی آپ کہتے ہیں, کہ جیسے پتھر اور پہاڑی علاقہ اور میدانی علاقہ ہر ایک میں یہ حکومت کر رہے تھے, تو وہاں پر یہ بڑے ہی معروف تھے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ راحت کے معنی قبیلے کے بھی آتے ہیں, خاندان کے بھی آتے ہیں, گروہ کے بھی آتے ہیں, ہے نا یہ بات۔ تو اب یہ لوگ جو تھے یہ ان کے اندر 9 راحت تھے, 9 سردار تھے, 9 لوگ تھے جو کہ برائی میں بڑے عروج کو پہنچے ہوئے تھے۔ और उन नौ में से एक का नाम क्या था जो इनमें सबसे ज्यादा सरकर्दा था? आप पिछले जो है वो सबक में पढ़ चुकी हैं, जो पिछले दिनों में आपने पढ़ा है, कदार। कदार कौन था? सबसे बड़ा बदबख्त और हरामी जिसने अल्लाह की ऊंटनी की कूंचे काट डाली थी, और बाकी आठ सरगने जो थे वो इसी कदार के मुआविन थे, इसी कदार के जो थे वो उसके साथ ताउन करते थे। फिर आप देखें कि यहां पर अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा कि उस शहर में नौ जत्थेदार थे, नौ उनके अंदर जो थे वो ग्रो थे, तो ये बात पता चलती है कि ये नौ चीदा चीदा बदमाश थे। जो करते क्या थे, कैसे बदमाशी करते थे, कैसे जो थे वो गलत काम करते थे, अल्लाह ताला कहते हैं युफ्सिदून फिल अर्द, जो जमीन में फसाद पैदा कर रहे थे। तो इनका जो है वो कौन सा किरदार हमारे सामने आता है कि ये ऐसे ही नहीं थे बल्कि जमीन के अंदर फसाद पैदा करने वाले थे। फिर जमीन में ये फसाद कैसे पैदा करते थे, ये सारे काम जो करते थे ये शिर्क वाले करते थे, ये जो काम करते थे ये कुफर वाले करते थे, ये लोगों को तौहीद कबूल ही नहीं करने देते थे, चाहते ही नहीं थे कि लोग जो हैं वो तौहीद कबूल करें। फिर दूसरी बात क्या करते थे कि अगर किसी ने इनकी मर्जी के खिलाफ किया तो उसको वैसे ही तबाहो बर्बाद कर देते थे, उसको कत्ल कर देते थे। और फिर इसके बाद और क्या करते थे कि वो लोग चोरी डाके करते थे, है ना? तो यानी एक काम नहीं कर रहे थे, बेशुमार कौम ये कौम ऐसे काम कर रही थी। और अगर किसी कौम के अंदर जो है ऐसे लीडर पैदा हो जाएं तो आप सोचें कि फिर उस कौम का जो है वो क्या हाल होगा ना। तो वो कौम में फसाद तो पैदा करते थे लेकिन वला युसलेहून, और इस्लाह का कोई काम नहीं करते थे। और अगर आप जो है अपनी सोसाइटी में चौधरी किस्म के लोगों का हाल देखें तो चौधरी किस्म के लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लेकिन जो उनके मुती लोग होते हैं उनके बच्चों को पढ़ने ही नहीं देंगे, उनको पढ़ने ही देंगे ताकि ये लोग गुलामी की जिंदगी बसर करते रहें और इनको शऊर ना हो, इनको पता ही ना चले, और अपने गलत कामों के लिए उनको इस्तेमाल करेंगे, है ना? गलत कामों के लिए उनको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर इनको जो है वो शऊर हो गया, अगर इनको जो है वो दीन का, अल्लाह का, आखिरत का एहसास पैदा हो गया तो ये हमारे खिलाफ उठ खड़े होंगे, है ना? तो आप देख लें कि हमारे यहां भी हर सोसाइटी में इस तरह के लोग जो हैं वो पाए जाते हैं कि खुद वो बुरे होते हैं और नेकी को वो पलने नहीं देते, नेकी को वो बढ़ने नहीं देते और बुराई जो है उसको फैलाते चले जाते हैं। तो ये लोग भी जो थे वो क्या थे, अल्लाह ताला कहते हैं कि नौ लोग थे जमीन में फसाद फैलाते थे और कोई इस्लाह का काम नहीं करते थे, कोई भी, वला युसलेहून, और इस्लाह का काम जो है वो नहीं करते थे। इस सिलसिले में जैसे आप ये बात देखें कि जैसे ऊंटनी का इन लोगों ने जो मुतालबा किया था तो इसमें क्या था कि मुतालबा किया, मौजा मिला, और मौजे की बेहुर्मती कैसे हुई कि सारे सरदार जमा हुए और आपस में मशवरा किया कि इस ऊंटनी को कत्ल कर दिया जाए। तो आप सोचिए कितनी ज्यादा इनका ये जुल्म था ना, कि मौजा मांगा अपने मुंह से और फिर उस मौजे को जो है यानी अल्लाह के मुकाबले पर आकर जो है वो उठ खड़े हुए। मसलन हजरत अब्दुल्ला बिन जमा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के दौरान में ऊंटनी का और उसे कत्ल करने वाले का जिक्र किया और फिर फरमाया उसे कत्ल करने के लिए एक दलेर सरदार उठा जिसकी बात मानी जाती थी, जैसे कुरैश में अबू जमा है। इससे क्या पता चलता है कि सरदारों की बातें मानी जाती हैं, पब्लिक उनको उनकी अताअत करती है, और मक्की दौर में भी जो सरदार थे पब्लिक उनकी क्या कर रही थी, अताअत कर रही थी, पब्लिक उनके पीछे लगी हुई थी और वो पब्लिक को अपने साथ जो थे वो मिलाए हुए थे। पालू वो बोले तकासमू बिल्लाही के कसम खाओ अल्लाह की, तकासमू आपस में कसम खाना, आओ सब मिलकर कसम खाएं, आओ अल्लाह के नाम का अहद करें, अल्लाह के नाम की कसम खाएं, और वो कसम किस लिए खाना चाहते थे, लनुबैतन्नहू व अहलहू, कि हम जरूर बजरूर जो है रात को जा पड़ेंगे, रात को जाकर ले लेंगे इसको। हू की जमीर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के लिए है, वालहू और इसके घर वालों को। सुम्मा लनकूलन्ना, फिर हम जरूर ब जरूर कह देंगे, ले वली यही इसके वली से, फिर इसके वली से कह देंगे, मा शहीदना महलिका, कि हम जो हैं क्या था, मा शहीदना, हम मौजूद ही नहीं थे, मा शहीदना, हम मौजूद नहीं थे, महलिका इसकी हलाकत के मौके पर, आले ही इसके खानदान की, हम इसके खानदान की हिलाकत के मौके पर मौजूद ही नहीं थे, वह इन्ना लस्वादिकून, और हम बिल्कुल सच कहते हैं। अब आप देख लीजिए, इन्होंने सबसे पहले ऊंटनी को जो है वो कत्ल किया, और सालेह अलैहिस्सलाम ने जो है क्या किया, कि जब इन्होंने ऊंटनी को कत्ल किया तो सालेह अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, तमत्तउ फी दारिकुम सलासता अय्याम, सूरत हूद आयत 65, के अपने घरों में 3 दिन और फायदा उठा लो, यानी उनके पास 3 दिन की मोहलत थी, लेकिन उन्होंने इस पर यकीन ना किया। शाम हुई ना जब 3रे दिन की, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया जाए। चुनाचे सब कसमें खाकर कहने लगे, ना तो भाई ये तन्ना हूं व आहला हूं, कि हम जरूर ब जरूर रात को सालेह अलैहिस्सलाम के घर में घुसकर आपको और आपके घर वालों को शहीद कर देंगे। अब आप देख लें कि यहाँ पे जो है लतुबैयतन्नहू जो है वो मारने के मानी जो है वो कैसे दे रही है, कैसे पता चल रहा है यहाँ पर कि उनका मतलब ये था कि हम जो है वो शहीद कर देंगे। असल में बाता यबीतु होता है रात गुजारना, बैयता के ये मानी होते हैं कि रात गुजारना, रात का कुछ हिस्सा, बैयता के मानी होते हैं रात का कुछ हिस्सा गुजरने पर घर पर जमा होकर किसी मामले में मशवरा करना, और इसके दूसरे मानी होते हैं शबखून मारना, यानी अब रात के कुछ हिस्सा गुजरने पर आप कहीं इकट्ठे होकर मशवरा कर रहे हैं तो गोया कि कोई बड़ी अजीब बात है। तो ये लफ्ज जो है जब इस पर शद भी आ जाती है तो ये लफ्ज मानी देता है रात के वक्त किसी पर हमला करना। तो उन्होंने क्या कहा, लानू भाई ये तन्ना हूं कि हम जरूर रात के वक्त इस पर हमला करेंगे और आपके घर वालों पर भी। और फिर ये क्यों कहा, यानी जब वो इतने जो थे वो बदमाश किस्म के थे, इतने बुरे थे, फसादी थे, जत्थेदार थे, अब वो डर क्यों रहे थे कि जब पूछेंगे इनके वली तो कह देंगे मा शहीदना महलिका अहले ही वइन्ना लस्वादिकून, कि इनके घर वालों की हलाकत के मौके पर हम वहां मौजूद ही नहीं थे, वइन्ना लस्वादिकून और हम सच्चे हैं। यही बात आपने सूरत यूसुफ में भी पढ़ी थी है ना, उन्होंने कहा था कि हम तो सच्चे हैं, और आपने जो है यही बात और कहां पढ़ी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी उन्होंने क्या कहा था, अहले मक्का ने जब देखा कि आपकी दावत फैलती चली जा रही है और कोई उनका हरबा कारगर नहीं हुआ, तो उन्होंने मिलकर जो है वो क्या साजिश की थी, जब आप लोग हिजरत कर रहे थे एक एक करके जा रहे थे तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए बिल्कुल ऐसी साजिश की थी कि सब कबीलों के लोग मिलकर आप पर हमला करें ताकि बनी हाशिम किसी एक कबीले को मुल्जिम करार न दे सके, और फिर सब कबीलों से वो बयक वक्त लड़ नहीं सकेंगे, और अगर वो दियत मांगेंगे भी तो क्या होगा कि एक पर तो यानी कातिल का कत्ल का बदला तो ले नहीं सकते कि सब मिलकर हमला कर रहे हैं, और दियत मांगेंगे तो देखा जाएगा मिलकर फिर देनी कौन सी मुश्किल होगी ना, है ना। और आप जो थे उनके दरमियान में सूरत यासीन पढ़ते हुए जो है वो खामोशी से जो है वो वहां से आप निकल गए और उनको पता भी ना चला। तो क्या बात पता चलती है कि अल्लाह जाला जिसको बचाना चाहे उसको कोई चख नहीं सकता, उसको कोई मार नहीं सकता, उसको कोई जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो अब वो यानी अब आप देखें कि इतने वो बुरे थे, उनको फिक्र इस बात की थी कि कत्ल तो करेंगे लेकिन हमें झूठ नहीं करार पाना चाहिए, हमें झूठे नहीं कहना चाहिए किसी को भी। अब आप देख लीजिए कि गलत काम कर रहे हैं लेकिन चाह ये रहे हैं कि पता ना चले कि हम गलत काम करते हैं। चौधरी किस्म के लोग भी ऐसे करते हैं ना, लोगों को खरीद लेते हैं, लोगों को बेच देते हैं और फिर उनके जो लोग होते हैं वो जाकर लोगों को कत्ल कर देते हैं। तो फिर वो कहते हैं अच्छा हमें तो पता ही नहीं चला, वो आपसे पता चल रहा है कि फलां कत्ल हो गया, फलां कत्ल हो गया, है ना। और सलाहुद्दीन, कौन सलाहुद्दीन? आप देखें कि बड़े बड़े जर्नैल जिसमें मैं तो इस वक्त तकबीर के जो एडिटर हैं सलाहुद्दीन उनका जिक्र करी, उनको भी शहीद कर दिया गया। फिर इसी तरह डॉक्टर गुलाम मुर्तजा, उनको भी जो है वो शहीद कर दिया गया, चंद हजार के इवज, चंद हजार पाकिस्तानी सिक्कों के इवज उनको भी शहीद कर दिया गया। डॉक्टर नजीर शहीद है ना, फिर हकीम सईद, हकीम सईद, तो बेशुमार लोग हैं। तो उम्मत मुस्लिमा की तारीख जो है वो इससे भरी पड़ी है कि लोगों को जो है रास्ते से हटा दिया जाता है। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह उनको देख लीजिए ना, उन पर भी हमला हुआ। तो बहरहाल अब उन्होंने यही प्लानिंग की और साथ ही कहा कि हम कहेंगे कि हम तो बिल्कुल सच कहते हैं, वइन्ना लसादिकून, मौजूद भी नहीं थे और हम बिल्कुल सच कहते हैं। तो ये थी कि हम जो है वो मुजरिम ना बन सकें और इनके यानी इनके जो वली हैं जब हमसे मुतालबा करेंगे दियत का तो हम कहेंगे हमें तो पता ही नहीं, तो हम मौजूद ही नहीं थे, तो फिर ये कैसे करें, है ना। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो क्या फरमाते हैं, मकरू मकरों व मकरना मकरों व हुम ला यशऊरून। यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो बता रहे हैं कि एक तरफ इन फसादियों की चाल थी और दूसरी तरफ अल्लाह की तदबीर थी। मकरू मकरन, ये चाल तो वो चले, कौन? ये जो हजरत सालेह अलैहि सलाम की कौम के जो थे वो तिस अतु राहतिन थे, जो नौ सरदार थे, उन्होंने ये चाल चली। और दूसरी चाल जो है वो किसने चली, मकर ना मकरन, और हमने जो है वो चली चाल। तो आप देख लें कि एक तरफ उनकी तदबीर थी और दूसरी तरफ जो है वो अल्लाह ताला की तदबीर थी। और यहां पर जो है वो मकर का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है और फेल में भी इस्तेमाल हुआ है और इस्म में भी इस्तेमाल हुआ है। तो मकरू फेल है, मकरना फेल है, है ना। तो फिर इसके बाद जो है दोनों जगह पे मकरन मकरन जो है ये इस्म है। तो इसका मतलब है कि अगर सिर्फ मकरू और मकरना आता तो भी इसके अंदर जो है वो तदबीर के मानी जो हैं वो पाए जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर दोबारा जो है वो ये बात कही कि एक चाल तो वो चले और फिर एक चाल हमने चली। तो अब आप देखें कि मकर का काम क्या है, मकर के मानी क्या है, किसी काम को सर अंजाम देने के लिए हीला जुई करना, हीला जुई करना, धोखा करना, किसी को खुफिया तरीके से नापसंदीदा चीज में दोचार कर देना। और ये लफ्ज अमूमन बुरे मफहूम में आता है। मकर का लफ्ज क्या होता है, मकार, फरेबकार के लिए आता है ना। अगर ये अल्लाह की तरफ इसकी निस्बत हो तो क्या है, जवाबी कार्रवाई के लिए आता है कि अल्लाह ताला जो है मकार लोग जब मकारी करते हैं तो फिर जवाब में क्या करते हैं, फिर जो है वो इसका तोड़ करते हैं। वो के मकर लफ्ज अच्छे मकसद के लिए भी आता है और बुरे मकसद के लिए भी, लेकिन अक्सर बुरे मफहूम में इस्तेमाल होता है। वह मकरू मकरू व मकरना मकरन, फिर हमने भी एक चाल चली। वहुम ला यशुरून, जिसकी उन्हें खबर भी ना थी। ये कौन सी चाल है जो अल्लाह ताला ने चली कि उनको खबर भी ना हुई? असल बात क्या थी कि उन्होंने क्या किया कि पहले तो ऊंटनी को जो है वो कत्ल कर दिया, फिर उसके बाद उन्होंने उनको तीन दिन की मोहलत जो हजरत सालेह अलैहि सलाम ने दी थी, और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि यानी हम पर इससे पहले कि सालेह का अजाब आए, वैसे तो आने वाला कोई नहीं, इससे पहले वो अजाब आए तो क्यों ना उठनी की तरह इसका भी काम तमाम कर दें, नाउज बिल्ला। तो इसीलिए उन्होंने मुफस्सरीन की राय है कि वही रात तजवीज की जिस रात अजाब आना था, कि किसी तरह बस इनको जो है वो खत्म कर दिया जाए, और उसी रात उन पर जो है वो अल्लाह का अजाब आ गया, اللہ تعالی کا ایسے عذاب آیا کہ وہ کیا سمجھ رہے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ رحمت آ رہی ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے پاس جو ہے، ہاں ہاں ہمارے پاس جو ہے وہ سایہ آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالی نے کیا کیا کہ ان پر عذاب بھیجا، اور ایسا عذاب کہ اس کو ان کو جو ہے وہ باڑ والی سوکھی ہوئی اور ٹوٹی ہوئی باڑ کی طرح جو ہے وہ کر دیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو یہ جو چال ہے اس سے مراد کیا ہے؟ عذاب، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تدبیر ان پر کی تو کیا تھا؟ مفسرین بتاتے ہیں کہ جن افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کی قوم سے پہلے ہی عذاب نازل کیا اور ان پر پتھر برسا کر ان کو کچل ڈالا اور تباہ کر دیا۔ جب مہلت کا پہلا دن یعنی جمعرات کا دن آیا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ شام ہوئی، انہوں نے کہا مہلت کا ایک دن تو گزر گیا، جب دوسرے دن جمعے کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا لو مہلت کے دو دن گزر گئے۔ جب مہلت کا تیسرا دن آیا، ہفتے کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سوالے کی دیوی مہلت تو ختم ہو گئی، تین دن پورے ہو گئے۔ جب اتوار کی صبح ہوئی تو انہوں نے خوشبو لگائی اور تیار ہو کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں کون سا عذاب آتا ہے۔ انہیں معلوم بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے اور ان پر کس طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک شدید آواز آئی، سیحا، اور نیچے سے زلزلہ آیا۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ صرف سیحا آیا، بلکہ ساتھ ہی کیا تھا کہ ان پر جو ہے وہ زلزلہ آیا۔ اور جب ان پر جو ہے وہ آسمان سے شدید آواز اور نیچے سے شدید زلزلہ، تمام لوگوں کی روحیں پرواز گئی کر گئیں، وہ مر کر بحث و حرکت اور خاموش ہو گئے۔ وہ اپنے گھروں میں جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بے جان جسموں میں تبدیل ہو گئے، حرکت بھی نہ کر سکے، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کالم یغنو فیہا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کبھی وہ اپنی آبادی میں، اپنی بستی میں کبھی بسے ہی نہیں ہیں۔ فتولی عنہم وقال یا قومی لقد ابلغتکم رسالت ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام جو تھے ان کی تباہی اور بربادی پر افسوس کرتے ہوئے جو تھے وہ جو ہے وہ وہاں سے جو تھے وہ چلے گئے۔ تو یہ ہے بات، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں خبر بھی نہ تھی کہ ان پر کیسے عذاب آنے والا ہے اور کیسا عذاب آیا۔ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا کیا انجام ہوا۔ کیسی تھی ان کی چال؟ کہ اب ایک طرف اللہ کے معجزے کو، اونٹنی کو قتل کر دیا، اس کو جھٹلایا، دوسری طرف صالح علیہ السلام کے پیچھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَانْظُرْ، پس دیکھ، کیف کانا عاقبت مکرہن، کہ کیا تھا انجام ان کے مکر کا، ان کی مکاری کا۔ انا دمرناہم، ہم نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو ہے کیا کہا جا رہا ہے کہ دمرناہم، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کیا؟ اس میں جو ہے تباہی کے اندر آتا ہے کہ پورا کا پورا ان کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو تباہ کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ختم کرتا ہے تو کیسے تباہ کرتا ہے؟ بالکل ہی جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں شد بھی ہے نا، دم مرنا ہوں، ان کو نیست و نبود کر کے رکھ دیا، بالکل ہی ان کو جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دیا، غارت کر دیا۔ اور اس میں نو لوگ ہی شامل نہیں تھے، پوری قوم شامل تھی، کیونکہ قوم جو تھی وہ بھی منصوبہ قتل میں شریک تھی۔ منصوبہ تو خفیہ بنا، لیکن جب اس پر عمل کرنے لگے تو قوم بھی اس میں شامل ہو گئی۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا انا دمرناہم وقومہم، ان نو لوگوں کو بھی ہلاک کیا، دمرناہم उन नौ सरदारों को भी, राहत को भी, व कौम और उनकी कौम को, अजमाइन सबके सब, फतिल का बुयू तो हम, बस ये हैं उनके घर, खावियतम बिमा जलमू, खाली पड़े हुए हैं, बेआबाद हैं, और उनके घर जो हैं वो खाली क्यों हैं, उनके घर बेआबाद क्यों हैं, बिमा जलमू, उनके जुल्म की वजह से। अल्लाह ऐसे थोड़ी लोगों के घरों को जो है वो बेआबाद कर देता है। ये जो खावियतन है, खाव या से है, और इसके मानी क्या होते हैं, यानी कोई भी दो चीजों के दरमियान खाली जगह को कहते हैं, है ना। तो दो चीजों के दरमियान खाली जगह के लिए आता है तखविया। इसी तरह खबरदार के मानी होते हैं ऐसा मकान जो गिर जाए, जो बेआबाद और वीरान हो। आप पहले ही पढ़ चुके हैं सूरत अल बकरा आय 259 में, औकल लजी मर्रा अला करियतिन वहिया खावियतुन अला उरूशिहा। और आप पता है जो घर जो है वो बेआबाद है तो होता क्या है, वीरान है, बेआबाद है, तो गिरना शुरू हो जाता है, इन्हें पड़ी पड़ी उनमें जंग लगना शुरू हो जाता है। तो असल बात क्या थी, फतिल का बुयूतहुम, अल्लाह ताला कहते हैं वो हैं उनके घर, उस कौम के उन सरदारों के घर, खावियतन खाली पड़े हुए हैं, बिमा जलमू, जो उन्होंने जुल्म किया। तो जुल्म क्या किया, तौहीद का इनकार, पैगंबर का इनकार, मौजे का इनकार। और यहाँ पे ये क्यों कहा खास तौर पे कि उनके घर जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं, इसलिए कि वो कौम जो थी वो बड़े खूबसूरत घर बनाती थी। अल्लाह ताला ने जो है इस कौम को क्या किया था, कौम आद का जानशीन बनाया था। इनके घर जो थे बड़े ही खूबसूरत घर थे, पहाड़ों को तराश तराश कर, और फन तामीर के ये माहिर थे। सब जाब सखरा बिलवाद, तो इतने खूबसूरत घर बनाने वाले, अब इनके घरों का हुआ क्या कि वो खंडर हो गए, वो बेआबाद हो गए, वो घर जो थे वो बर्बाद हो गए। अब वो घर खाली पड़े हुए, खावियतन, वो खाली पड़े हुए, बिमा जलमू, उनके अमल की वजह से, उनके जुल्म की वजह से। इन नफीजा लिकल आयतन, बेशक इसमें एक निशानी है, एक इबरत है, कौमी या लमून, एक ऐसी कौम के लिए जो कि इल्म रखने वाली है।